नमस्कार दर्शकों, आह्वान इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम द्वारा हमारी ये कोशिश रहती है कि हम आपके जीवन में आई हुई कठिनाइयों का यहाँ उचित समाधान कर सकें और आप तक पहुंचा सकें। दर्शकों, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो सृष्टि है वो स्थूल और सूक्ष्म से बनी है। परमात्मा को हम सूक्ष्म मानते हैं और अपने शरीर को हम स्थूल मानते हैं। तो जो ये फ्यूजन है सटल और ग्रॉस का, आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो आज हमारे साथ आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे स्टूडियो में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता दीदी हैं। गीता दीदी, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
थैंक यू।
ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे कि हम जानते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म के मिश्रण से ही सारी दुनिया चलती है, तो आज का वो प्रश्न रमेश जी का लखनऊ से है। वो कहते हैं कि महान से महान, उपयोगी और प्रिय इंसान भी मरते ही वह शरीर बेकार हो जाता है, और जिंदा इंसान का महत्व तभी तक है जब तक उसमें स्थूल शरीर जैसे कि आत्मा है,
सूक्ष्म
आत्मा है। सूक्ष्म और स्थूल से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है? सूक्ष्म इम्पोर्टेंट है या स्थूल इम्पोर्टेंट है? ईश्वर सूक्ष्म भी है और स्थूल भी है, कैसे?
बहुत सुंदर प्रश्न आया है। स्थूल और सूक्ष्म
जी,
अगर हम देखें तो स्थूल माना ये प्रकृति के पांच तत्व जिससे ये सारा भौतिक संसार बना है। जितनी भी फिजिकल चीजें हम दुनिया में देखते हैं वो प्रकृति के पांच तत्व से बनी हुई है, और ये संसार भी पांच तत्वों का बना हुआ है, इसलिए हम इसको फिजिकल वर्ल्ड और स्थूल वतन कहते हैं।
तो ये सारी चीजें स्थूल हैं
क्योंकि वो प्रकृति के पांच तत्वों से बनी हुई है। पर इन चीजों का उपयोग करने वाली जो चैतन्य शक्ति है, उपभोक्ता, वो है चैतन्य शक्ति, वो इसका उपयोग करती है
जी।
इसलिए संसार प्रकृति और पुरुष माना पांच तत्व और चैतन्य शक्ति आत्मा, इन दो से ये संसार का खेल बना हुआ है
जी।
आप सुबह से लेकर रात तक अनेक चीजों का उपयोग करते हैं, ये सभी चीजें स्थूल है, पांच तत्व से बनी है, इसलिए हम ये चीजें खरीदते हैं, ग्रोसरी कहते हैं, स्थूल चीजें हैं ये
जी जी।
पर इन चीजों का उपयोग सूक्ष्म शक्ति के द्वारा होता है
जी।
मान लो आपके पास टेलीफोन है, वो एक साधन है, इंस्ट्रूमेंट है,
वो स्थूल हो गया,
वो स्थूल है
जी।
पर उसका उपयोग आप सूक्ष्म शक्ति के द्वारा करते हैं
जी,
कि
जी।
पहले आपको मन में थॉट आता है कि मुझे फोन करना है, फिर आप डायल करते हैं, बातचीत करते हैं, तब उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग होता है
जी जी।
आपके पास स्कूटर है, वो स्थूल है, पर आप सोचते हैं कि स्कूटर उठाकर दुकान जाता हूं, तो ये थॉट है, और फिर कर्म शक्ति द्वारा हम उसको चलाते हैं और लेके जाते हैं
जी।
तो हरेक स्थूल चीजों का उपयोग सूक्ष्म शक्ति करती
जी।
कंप्यूटर है, वो एक ब्रेन के समान कहते हैं ना, कंप्यूटर जो है वो ब्रेन के हिसाब से बना हुआ है
जी।
पर प्रोग्रामर फिर भी चैतन्य शक्ति है कि हम उसमें जो प्रोग्राम देते हैं, उपयोग करते हैं, वो चैतन्य शक्ति आत्मा है
जी जी।
तो पूरा खेल ही व्यक्ति और वस्तु का बना हुआ है
जी।
व्यक्ति चैतन्यता की प्रतीक है और वस्तु स्थूल का प्रतीक है। इवन हमारा जीवन भी स्थूल और सूक्ष्म के कॉम्बिनेशन से बना है
जी।
शरीर जो है वो पांच तत्व से बना है, और उसका उपयोग करने वाली, धारण करने वाली जो शक्ति है वो चैतन्य शक्ति आत्मा है
जी।
पर स्थूल जो है वो सूक्ष्म के आभारी है,
उस पर डिपेंडेंट है,
उस पर डिपेंडेंट है। जैसे ये शरीर है वो हमें ऐसा प्राप्त होता है जैसा मुझ आत्मा के कर्म के हिसाब है
जी।
जैसे सोना है और उससे हम गहना बनाते हैं, तो सोना शुद्ध है तो गहना भी शुद्ध बनेगा। सोने में एलॉय मिक्स है तो गहना भी मिक्स धातु का ही बनेगा। इसी प्रकार बीज और वृक्ष, बीज सूक्ष्म है और उसका वृक्ष विस्तार है, बड़ा रूप है उसका। तो जैसा बीज होगा ऐसा ही वृक्ष उगेगा। इसी प्रकार जो सूक्ष्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है आत्मा, उसके विचार कर्म के ऊपर शरीर का आधार रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि शरीर जो है वो आत्मा को आभारी है
जी।
जब आत्मा के हिसाब किताब कर्मिक पूरे हो जाते हैं तो शरीर छूट जाता है
जी।
हम कहते भी हैं जब कोई शरीर छोड़ के जाता है तो कि भी हमारा जो ऋणानुबंध था, माना जो हमारा उनसे कर्मिक अकाउंट था, वो पूरा हो गया, इसलिए शरीर छूट गया
जी।
तो स्थूल चीजें सूक्ष्म पर आधारित है, क्योंकि स्थूल चीजों का क्रिएटर जो है वो चैतन्य है।
चैतन्य है,
मान लो ये टिपोई है, ऐसी बनानी है, वो आइडिया किसको आया?
हमें
माना चैतन्य को आया ना
जी।
तो हर चीज पहले मन में उत्पन्न होती है, विचार के रूप में, आइडिया के रूप में, फिर हम उसको स्थूल रूप आकार देते हैं
जी जी।
तो इसलिए स्थूल सूक्ष्म पर आधारित है, बल्कि हम कह सकते हैं कि स्थूल का क्रिएटर सूक्ष्म है, इसलिए प्रथम आत्मा पीछे शरीर
जी।
पहले मनुष्य आत्मा पुरुष, फिर वो शरीर क्रिएट करता है
जी। दीदी तो हम स्थूल को डेड और सूक्ष्म को लाइव माने,
इसमें दो चीज है कि जो स्थूल है उसमें दो स्टेज है, एक है नॉन लिविंग, निर्जीव जिसको हम कहते, माना जीवंतता उसमें नहीं है
जी,
तो वो है एकदम स्थूल चीजें ये
जी जी।
और दूसरा है लिविंग, वो भी है स्थूल पर उसमें प्राकृतिक चेतना है, जैसे वृक्ष है तो स्थूल ही, पर वो भी एक पौधे से वृक्ष बनता है,
अपने आप बड़ा होता है।
हाँ, तो उसमें प्राकृतिक चेतना है, चैतन्य शक्ति नहीं है पर प्राकृतिक चेतना है, जैसे पेट में चयापचय की जो क्रिया है
जी,
वो ऑटोमेटिक चलती है
जी।
आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके भी 2-3 घंटे तक वो अंदर क्रिया चलती रहती है, वो प्राकृतिक चेतना है। तो नॉन लिविंग, जड़, जीवंत, चैतन्य और महसूसता। तो जड़ की 2 स्टेज है, जड़ और जीवंत,
लिविंग,
चैतन्य की भी 2 स्टेज है। पशुओं में भी आत्मा है, चैतन्य शक्ति है
जी जी,
पर जो रियलाइजेशन है गहरी, वो मनुष्य आत्मा में
जी। दीदी जैसे जो धनी व्यक्ति होते हैं वो सद्गुण और जीवन मूल्यों से हीन होकर धन इकट्ठा करने में, अपनी लाइफ की लग्जरी स्टेटस वगैरह में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, और ये सारी चीजें हमें नुकसान ही देती हैं लास्ट में। तो क्या स्थूल बिल्कुल बेकार है, सूक्ष्म के नुकसान ही पहुंचाता है?
ऐसा नहीं है। आज एक इंसान धन साधन इकट्ठा करता है, बराबर, जीवन भर श्रम करता है, वो तो कीड़े मकोड़े भी अनाज का दाना दाना ले जाकर के अनाज का ढेर बना देता है। एक छोटी सी चींटी भी आप देखो तो अनाज का ढेर बना देती है
जी।
माना हमने इंसान होकर सिर्फ धन साधन का ढेर लगा दिया, तो हमारी वैल्यू उतनी ही है जितनी एक कीड़े मकोड़े की है
जी।
स्थूल हमेशा दुख ही देता है ऐसा नहीं है, हम उसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं उस पर सुख और दुख का आधार है। स्थूल हमारा सहायक है, वो तो हमारा मददगार है। हम स्थूल के द्वारा ही अभिव्यक्त होते हैं। आत्मा में विचार है पर मुख द्वारा ही हम उसको अभिव्यक्त करते हैं।
जी,
मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो चेहरे के द्वारा हम दिखाते हैं।
जी,
तो स्थूल सहायक है, उसका मन के भावों का आविर्भाव वो करता है, उसका प्रत्यक्षीकरण वो करता है।
जी,
इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि स्थूल सदा दुख ही देता है, पर स्थूल जो भी चीजें हैं, धन साधन सुविधाएं जो भी है, वो प्रकृति के पांच तत्व से बनी हुई है और प्रकृति का नियम है कि वो प्रकृति परिवर्तनशील है। इसलिए हर चीज आखिरकार नाशवंत है,
नाशवंत है,
बदलती है और आखिर खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है तो हम समझते हैं कि ये दुख देती है।
जी,
पर हम चीजों का उपयोग करते करते डिपेंडेंसी डेवलप कर लेते हैं तो जब वो चीज खत्म हो जाती है तो हमें दुख का अनुभव होता है।
जी,
तो स्थूल दुख नहीं देता है पर हमारी डिपेंडेंसी हमें दुख देती है,
क्योंकि स्थूल परमानेंट नहीं है।
हाँ,
उसने एक दिन खत्म हो जाना है,
होना है, तो वो हमें समझना है। जब वो समझ या वो सत्य, प्रकृति का सत्य यही है कि वो परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है।
जी,
पर वो सत्य जब हम नहीं याद रखते हैं तो हमें दुख का अनुभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि स्थूल हमारा सहायक है, सहयोगी है, हमारा सबोर्डिनेट है। आत्मा चैतन्य जो है वो प्रमुख है, मुख्य है, और प्रकृति जो है वो गौण है, सब्सिडरी है।
ठीक है दीदी। दीदी, जैसे कि जो फिर भी बिना स्थूल के सहारे के जो सूक्ष्म है, जैसे परमात्मा भी हैं, तो अगर हमारी काफी सालों से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब हमारी पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ गया तो परमात्मा ने किसी न किसी रूप में अवतार लेना ही पड़ा परमात्मा को, तभी वो कुछ बदलाव लेके आ पाए। तो सूक्ष्म को भी स्थूल की सहारे की पूरी जरूरत पड़ती है।
इसलिए मैंने कहा ना कि स्थूल कोई खराब चीज नहीं है।
जी,
स्थूल कोई दुख देने वाली चीज नहीं है, वो तो हमारी सहयोगी एक सत्ता है। इसलिए सूक्ष्म जो है उसी से विस्तार होता है। देखो, हर बात पहले सार रूप में पता चलती है, फिर बढ़ते बढ़ते उस बात का विस्तार हो जाता है। हर चीज सूक्ष्म में क्रिएट होती है, फिर उसका विस्तार होता है। जैसे मैंने आपको बीज से बताया कि वृक्ष होता है, एक स्पर्म से कैसे पूरी बॉडी डेवलप्ड होती है, अणु अति सूक्ष्म है, एनर्जी और उसका उपयोग कितना विराट है,
कितना विराट है।
तो जो मूल चीज है, एनर्जी जो है वो सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म है, फिर हम उसका विस्तार करके उपयोग करते हैं। इवन हम मनुष्यात्माएं, परमात्मा की बात तो छोड़ें, लेकिन हम मनुष्यात्माएं, हम आत्माएं भी शरीर द्वारा अभिव्यक्त होती है ना।
जी,
आज हम भी इस संसार में अपना अस्तित्व जो है वो स्थूल के सहयोग से बना के बैठे।
जी जी,
इसलिए परमात्मा को भी सूक्ष्म है, उसे भी स्थूल का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी आएगा, मनुष्य आत्मा को ज्ञान देना है तो हमें मानव शरीर का आधार लेना ही होगा। तो इस भौतिक जगत में आकर मुझे जो भी कार्य करना है, चाहे मुझे आत्मा को कार्य करना है, धर्मात्मा को कार्य करना है या परमात्मा को कार्य करना है, जिसको भी संसार कर्म क्षेत्र पर आकर कार्य करना है, तो कार्य करने के लिए फिजिकल ऑर्गन्स चाहिए।
चाहिए।
माना हमें स्थूल का उपयोग करना ही होगा।
पर दीदी जो ज्यादा पावरफुल हुआ हम उसे सूक्ष्म को ही कहेंगे क्योंकि अंदर से गाइडेंस,
सूक्ष्म के बिगैर स्थूल का कोई उपयोग ही नहीं है ना।
नॉलेज सारा सूक्ष्म के पास है।
हाँ, नॉलेज है, अनुभूतियां हैं, बौद्धिकता है, आइडिया है, ये सारा तो चैतन्य से जुड़ा हुआ है ना।
जी जी,
स्थूल का उपयोग ही तब है जब सूक्ष्म है।
जब सूक्ष्म,
जैसे ये शरीर भी जब तक चैतन्य शक्ति आत्मा है वो क्रियाशील है। जैसे ही चैतन्य शक्ति आत्मा शरीर छोड़ देती है ये डिटोरिएट होने लगता है, ये इनके जो तत्व है वो बिखरने लगते हैं।
दीदी जैसे हमें ये हर किसी को ये चीज पता है कि मरने के बाद कोई ऐसी शक्ति है जो अंदर से जाती है तभी हम एकदम से डेड हो जाते हैं। तो जब कोई डेड बॉडी, कोई डेड हो जाता है तो हम उसका नाम तक नहीं लेते हैं, हम कहते हैं कि बॉडी को हटाओ, बॉडी को वो करो, नाम भी नहीं लेते हैं उस इंसान का जो होता है। तो ये चीज हमें सिर्फ उसकी डेथ के बाद ही क्यों रियलाइज होती है कि ये सिर्फ शरीर था और जो मेन इंसान था, जो आत्मा थी, वो चली गई, और उसके जिंदा जी तो हम सब कुछ शरीर से लेना देना करते हैं।
क्योंकि हमें उसके बारे में कोई अधिक ज्ञान नहीं है, जो दिखाई नहीं देता है उन अविनाशी शक्तियों के बारे में हमें ज्ञान नहीं है। ये चीजें स्थूल है, दिखाई देती है तो वो याद भी रहती है और उसका नॉलेज भी है हमारे पास, पर सूक्ष्म शक्तियां जो दिखाई भी नहीं देती और उसका ज्ञान भी नहीं है तो फिर वो याद भी नहीं रहता है। इसलिए जीवन भर इंसान अपने आप को शरीर ही समझता रहता है।
जी,
शरीर छोड़ने पर हम कहते हैं उस आत्मा को शांति देना।
जी जी,
पर जीते जी शरीर में रहते हम अपने आप को आत्मा नहीं समझते,
नहीं समझ पाते हैं।
तो ये जो बेसिक ट्रूथ्स है, सूक्ष्म चैतन्य शक्ति के बारे में जो कुछ ज्ञान है वो हमारे पास है ही नहीं ना, इसलिए हमें स्मृति भी नहीं है और उसका उपयोग भी हम नहीं करते। परमात्मा की विशेषता यही है कि परमात्मा आकर के ये सारे ही जो सनातन सत्य है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है, जो चैतन्य शक्ति के संबंध में है, वो परमात्मा आकर के रिवील करते हैं।
जी
समझे, जब वो ज्ञान हमें प्राप्त होता है तब हमें समझ में आता है कि स्थूल और सूक्ष्म दो चीज क्या है और वो दोनों मिलके कैसे कार्य करते हैं। फिर भी फर्स्ट सूक्ष्म है, सेकंड जो है वो नंबर पर वो स्थूल है, क्योंकि सूक्ष्म ही स्थूल का क्रिएटर है और उसका उपयोग करता है। प्रकृति के जो पांच तत्व है वो चैतन्य मनुष्य आत्मा को ही फॉलो करते हैं। जब हम मनुष्य आत्माएं पवित्र है तो ये तत्व भी पवित्र है। जब हम अपने जीवन के नियम संयम गंवाते हैं तो ये प्रकृति के तत्व, माना ये स्थूल मटेरियल जो है वो उसको फॉलो करता है, वो भी तमोप्रधान बनता है। तो स्थूल की गति स्थिति का आधार सूक्ष्म ही है,
सूक्ष्म ही है। तो इन दोनों के फ्यूजन से ही पूरी प्रकृति चलती है।
इनके फ्यूजन से ही ये संसार चक्र चलता है, ये खेल चलता है,
सबको चलता है। दीदी जैसे आपने एक एपिसोड में हमें बताया था कि सोल कॉन्शियस और बॉडी कॉन्शियस दोनों का डिफरेंस, तो जो हमारे को रियलिटी, जो ट्रुथ ऑफ लाइफ है वो हमें सोल कॉन्शियस में ही कैसे समझ में आता है, इस पर बताइए जरा।
क्योंकि जो मूल सत्य है वो है कि हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, आत्मा शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, जिसको हम कहते हैं हम जीवन जीते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो जीवन भर किए हुए कर्मों का जो माइनस प्लस का हिसाब बनता है, वो रिमेन जो उसका हिसाब है वो आत्मा अपने साथ लेकर के जाती है। पर जब हम माना बॉडी के द्वारा कार्य करते हैं, बराबर, आज ये भौतिक जगत है उसके साथ चैतन्य आत्मा का जो संपर्क है वो शरीर द्वारा है, स्थूल के द्वारा है, मैं आंख द्वारा मैं इस दुनिया को देखती हूँ, कान द्वारा मैं इस दुनिया के आवाज को सुनती हूँ, मुख द्वारा मैं चीजों का स्वाद लेती हूँ। तो संसार से, इस भौतिक जगत से जो हमारा संपर्क है, वो आत्मा जो है वो शरीर द्वारा वो संपर्क करते
जी।
शरीर बीच में एक माध्यम बनता है जिसको धारण कर आत्मा भौतिक जगत को देखती है, सुनती है, अनुभव करती है, संपर्क में आती
दीदी।
पर आत्मा निकल जाने के बाद वो कांटेक्ट खत्म हो जाता है। अब शरीर द्वारा हम संपर्क में आते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि शरीर के संपर्क में या प्रकृति के संसर्ग में रहते रहते हम अपने को आत्मा समझना भूल जाते हैं,
भूल जाते हैं,
वो विस्मृति हो जाती है और खुद को शरीर समझने लगते हैं। तो बॉडी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ और जो मूल सोल कॉन्शियसनेस था, जिसके आधार पर ही हम इस भौतिकता का सुख ले सकते, वो सोल कॉन्शियसनेस खत्म हो जाता है। इसलिए यही भौतिकता फिर दुख का कारण बन जाती है।
दीदी तो बॉडी कॉन्शियस में अगर हम रहेंगे तो हम दुखी दुख, क्योंकि हमारे को हर चीज दुख लगेगी, तो सोल कॉन्शियस में रहने के लिए क्या क्या चीजें प्रैक्टिस करें?
बॉडी कॉन्शियस में हम रहते हैं तो हमें जो हमारी इंद्रिय है, ऑर्गन्स है, हर इंद्रिय के अपने रस है। आंखों को देखने का रस है, मुख को स्वाद है, खाने का रस है, कान को सुनने का रस है ना। तो ये कहते हैं ना भी रूप रस शब्द स्पर्श, ये हर इंद्रिय का रस है। तो इससे हम बॉडी कॉन्शियस बनते जाते हैं, क्योंकि जब हम इंद्रिय रसों को भोगते हैं तो हमें और उसे पाने की इच्छा होती है, उसका अंत नहीं होता, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं।
इंद्रिय रस उन्हें ही कहते हैं, जैसे कि आपने बताया कि कान से सुनना उस कान का रस हो गया,
सुनने का रस, का सुनने का रस,
सुनने का रस,
इससे देखने का रस
जी।
एक है हमने आंखों से देखा, पर मन से उसको चखा भी
जी,
तो
जी,
फिर
जी।
मैं हम मुड़ मुड़ के बार बार देखते हैं,
इसलिए
क्योंकि हमने सिंपली डिटैच होके देखा नहीं, पर हम देखने के रस में बह गए तो बार बार पीछे मुड़ के देखते रहते। तो ये हर ऑर्गन्स का एक रस है। जैसे मुझे हाथ लगाने की इच्छा होगी, अट्रैक्शन होता है, कोई चीज अच्छी खाई फिर खाने की इच्छाएं होती रहती। पर अगर हम पावरफुली सोल कॉन्शियस है तो हमारा कंट्रोल रहेगा कि भी जो जरूरी है वो खाना है, न कि स्वाद वश खाते ही रहना है
जी,
है ना। तो इसलिए देह का कॉन्शियसनेस जो है वो नुकसानकारी। देह तो एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम उपयोग करते हैं तो वो सही है। तो वही सोल कॉन्शियसनेस माना इन इंद्रियों के द्वारा कर्म करते हुए भी मुझे स्व के स्वरूप में स्थित रहना है तो कंट्रोल रहेगा। अब उसके लिए हमें दो तीन अभ्यास करने चाहिए। जैसे एक है आत्मस्मृति की प्रैक्टिस, कि हम खुद ही खुद को बार बार कर्म करते हुए याद दिलाएं कि कैसे मैं आत्मा हूँ।
मैं याद करती रहूँ कि मैं सोल हूँ।
हाँ, माना इन आंखों से देखने
महसूस करें
कि इन आंखों से देखने वाली मैं आत्मा हूँ, मैं आंख नहीं हूँ, पर आंख से अलग चैतन्य शक्ति है। तो उठते बैठते बोलते खाते पीते देखते कर्म करते हमें मन ही मन अवेयरनेस रहे कि मैं आत्मा हूँ, शरीर द्वारा कर्म कर रही, देखने में शरीर आ रहा है पर वास्तव में कर्म करने वाली शक्ति मैं सूक्ष्म आत्मा, देखने में बल्ब प्रकाश दे रहा है, हीटर गर्मी दे रहा है, पर वास्तव में इलेक्ट्रिक पावर ही हीटर द्वारा गर्मी देता है, बल्ब द्वारा प्रकाश देता है।
तो करंट सूक्ष्म हो गया।
हाँ, और ये साधन जो है वो स्थूल हो गए, पर सूक्ष्म दिखाई नहीं देता, इसलिए अवेयरनेस नहीं रहती और हम स्थूल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो एक तो हमें बार बार ये अवेयरनेस रखनी है हर कर्म करते हुए कि करने वाली मैं आत्मा कर्मेंद्रिय से अलग हूँ। शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है, मुझे स्वच्छ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, लेकिन मुझे उनके कॉन्शियस नहीं बन जाना है, मुझे अपने रियल सेल्फ में अवेयर रहना है
जी।
दूसरा अभ्यास सोल कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए कि हम जिससे भी मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कामकाज करते हैं, वो भी आत्मा है, बल देखने में शरीर आ रहा है, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, पशु शरीर, पर वास्तव में हमारा संबंध आत्मा से है, केवल शरीर से नहीं।
एक प्रश्न है मेरा कि जैसे आपने कहा स्त्री और पुरुष, तो आत्मा का भी कोई वो होता है कि आप फीमेल, आत्मा भी फीमेल या मेल होती है, आत्मा कोई भी शरीर ले सकती है?
आत्मा एक एनर्जी है, शक्ति है
जी।
शरीर स्त्री है या शरीर पुरुष है, आत्मा मेल फीमेल की बात नहीं, आत्मा तो एक एनर्जी है।